ஓம் சாந்தி. குட் ஈவினிங் சபிக்கோ. சபசே பலே தோ ஆப்கே அப்னே கர் மே பாபா கே கர் மே பஹுத் பஹுத் வெல்கம் ஹே. சங்கம் யுக் மே வோ பி இன் அந்திம் தினோ மே பாண்டவ பவன் மே சான்ஸ் மில்னா யே பி அப்னே ஆப் மே பஹுத் பரம் பாக்ய கே பாத் ஹே. கிட்னி சாரி ஆத்மாயே தரஸ் ரீ ஹே. லேக்கன் ஆப் சபிக்கு பாபா நே புலா லியா ஹே, இஸ்லியே பாபா கோ தேங்க்ஸ் ஹே. பாண்டவ பவன் யே தர்த்தி யே ஸ்தான் ஜஹாம் ஸ்வயம் ப்ரஹ்மா பாபா நே அப்னே ஆப்கோ அப்னே கர்மோ கே த்வாரா அப்னி ஸ்திதி கே த்வாரா அப்னி தபஸ்யா கே த்வாரா சம்பூர்ண அவஸ்தா கோ ப்ராப்த கியா. யே ஸ்தான் ஜஹாம் ஹமாரி தாதியா ஜினோனே அப்னே கர்மயோகி பன்கர் பாபா கி ஸ்ரீமத் அனுசார் பாபா கே சங் சங் அப்னே ஆப்கோ இத்னா பரிபக்வ பனாயா ஆத்மா கி பூர்ணத்வ கி வோ லேக்கே கயே. யே ஸ்தான் ஜஹா அபூர்ணதா சே பூர்ணதா கி ஓர் லே ஜானே வாலா ராஸ்தா யஹீ சே குல்தா ஹே. ஜஹா ஹம் சபி ஆஜ் பைட்டே ஹே, ஆப் சபி பாபா சே மில்னே ஆயே ஹே, பட்டி கர்னே ஆயே ஹே, அப்னே ஆப் சே மில்னே ஆயே ஹே, ஜோ யஹாம் சேவா மே ஹோங்கே பாண்டவ பவன் மே வோ பி அப்னே ஆப்கோ இசி உத்தேஷ் கே சாத் சேவா கர் ரஹே ஹோங்கே கி சேவா கே சாத் சாத் அப்னி ஸ்திதி கோ பி பூர்ணத்வ கி ஓர் லே ஜானா ஹே. तो सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारिया तो है ना, हाँ या ना? पक्के ब्रह्मा कुमार है? कौन कौन है पक्के? चवा तो एक बार खुद के लिए तालियां बजा लीजिए. तो पक्के बीके पक्के ब्राह्मण मतलब क्या बता सकते? हर कदम बाप की श्रीमत पर चलने वाले और पक्के ब्राह्मण, संपूर्ण पवित्र और सभी नियम धारणाओं पे चलने वाले और मेरा एक बाप दूसरा न कोई और बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है और एवर रेडी நிர்வீகாரி சம்பூர்ண நிர்வீகாரி ஓர் பிரம்மா பாபா கோ ஃபாலோ கர்னே வாலே சாரோ சப்ஜெக்ட் மே ஃபுல் மார்க்ஸ் லேனே வாலே பாஸ் வித் ஆனர் பன்னே வாலே. தோ சபி ஏசே ஹே, சபி ஏசே ஹே நா? கோய் கோய் சப் குச் கரத்தே படாய் பி பட் ரே ரோஜ் நியம் சென்டர் பி ஆத்தே முரளி பி சுனத்தே சப் குச் கரத்தே லேக்கன் சலத்தே சலத்தே கபி கபி ஏசே ஜான் மே ஸ்டக் ஹோ ஜாத்தே ஹோத்தா ஏசே கபி? ஆகே அபி குச் சலோ சல் ரே சல் ரே ஆகே குச் பஸ் லக்தா ஹி நீ குச் ஜேசே ருக் சே கே உன்கோ பூர்ண ப்ராஹ்மண் கஹேங்கே. कोई कोई ऐसे होते हैं कि किसी और को देख के और का पुरुषार्थ देख के और की स्थिति देख के इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है या सुपेरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना. कभी कभी हीन भावना आ जाती है, नहीं नहीं वो तो बहुत ऊंचे है तो मैं तो क्या उनके आगे कुछ नहीं. कभी कभी सुपेरिटी आ जाता है, कभी कभी डर लग जाता है कि ये आगे आएगा तो मैं पीछे हो जाऊंगा. होता है ना ऐसे कभी कभी संकल्प आता है. कभी कभी ब्राह्मणों में छोटा मोटा, बड़ा तो सारा अहंकार भी छोड़ दिया, सारी दुनिया से लड़ लिया, लेकिन छोटा छोटा अहंकार, छोटा छोटा ईगो, और ईगो जब हर्ट हो जाता है ना तो एकदम से बाप से रूठ जाते, ज्ञान से रूठ जाते, बाप से रूठ जाते, फिर एकदम ठंडे हो जाते, जे कोई उमंग उत्साह ही नहीं है। कोई ऐसे होता है कि सब सेवाएं चल रही है अच्छे से, बहुत जोर शोर से सेवा में लग जाते हैं, अचानक ऐसे कुछ होता है जो थोड़ा सा कहीं इंसल्ट हो गया, थोड़ा सा कहीं इग्नोर किसी ने कर दिया, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया, तो थोड़ा अंदर एक भावना आ जाती है कि नहीं, ये हमारे तरफ तो कोई देखता ही नहीं है। तो क्या इसे संपूर्ण ब्राह्मण कहेंगे? संपूर्ण तो नहीं कहेंगे ना, संपूर्ण अर्थात हर परिस्थिति में एक रस, संपूर्ण अर्थात हर आत्माओं के संबंधों में समान, संपूर्ण अर्थात स्थित प्रज्ञ, निंदा स्तुति, मान अपमान, जीत पराजय सब में स्थिति, उसको कहेंगे संपूर्ण। तो सबका लक्ष्य तो यही है ना कि संपूर्ण बनना है। बन सकते संपूर्ण? बन सकते कि नहीं बन सकते? इसीलिए बाबा ने देखो आपको गिफ्ट दिया है, लिफ्ट भी दिया है, ये पांडव भवन की भट्टी का है ना। सब पुरुषार्थ तो कर ही रहे थे लेकिन थोड़ा सा स्पीड शायद कम ज्यादा हो, इसलिए बाबा ने इस भट्टी की लिफ्ट दिया है कि अचानक से स्पीड से हम स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। एक छोटी सी एक कहानी शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक बुजुर्ग व्यक्ति बड़े चिंता में बैठे रहते हैं, तो उनका जो पोता होता है ना, ग्रैंडसन, पोता देखता है कि दादाजी बड़े चिंता में बैठे हैं, कि इनको क्या चिंता है इसे, तो जाता है और नजदीक जाके अपने दादा को पूछता है, दादाजी आपको क्या चिंता हो रही है, आप ऐसे उदास क्यों बैठे हो? तो कहते हैं कि बेटा मैं मेरे जीवन के बारे में सोच रहा था। तो उसको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी आ जाती है, वो बोलता है कि दादाजी हमको भी बताओ आपके जीवन के बारे में। तो दादाजी कहते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो सोचता था कि मैं सारी दुनिया को जीत लूंगा, दुनिया को चेंज कर लूंगा, लेकिन जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आ गया कि दुनिया तो बहुत बड़ी है, तो मैं सोचने लगा कि मेरा देश, मेरा समाज जो है उसके लिए कुछ करूंगा, उसको चेंज करूंगा। फिर और थोड़ा बड़ा होने लगा तो फिर परिवार देखने लगा कि समाज में भी बहुत लोग है, परिवार है, तो परिवार को चेंज करना है। और आज जब बुढ़ापा आ गया है तो आज मैं सोच रहा हूं कि मैं दुनिया चेंज करने निकला था, कि शायद मैं खुद को चेंज कर लेता तो सारी दुनिया चेंज हो जाती है ना। तो बाबा भी हमें क्या बताते, विश्व परिवर्तन से पहले स्व परिवर्तन, खुद को चेंज करना है, खुद को परिवर्तित करना है। परिवर्तन किस चीज का होता है? खुद को मतलब शरीर तो यही रहेगा है ना, शरीर तो चेंज नहीं होगा, तो परिवर्तन किस चीज का होगा? संस्कारों का होगा, वाइब्रेशंस का होगा, संस्कारों का होगा। तो संगम युग में पुरुषार्थ ये, बाबा तो देखो सबको बाबा ने चुन चुन के यहां लाया, अपना बना लिया, हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, सारे जन्मों में भटकते थे, भगवान को पुकारते थे, लेकिन हमारे पुकारने से भी ज्यादा जब उसकी नजर हम पर पड़ी तो हम बाबा के बन गए है ना। तो बाबा ने तो हमको चुन लिया, लेकिन हमारा पुरुषार्थ वही है कि हम अपने आप को कितना बदलते हैं, हम अपने आप को कितना बाबा के समकक्ष लेके आते हैं, बाबा जैसे चाहते हैं, बाबा की आशाओं के अनुरूप अपने आप को कितना ढालते हैं, ये हमारे ऊपर है। और इसलिए कहा कि ये जो धरनी है, यहाँ आत्माएं अपनी प्राइमरी स्टेज में आई है ना, प्राथमिक अवस्था में आई, लेकिन यहाँ से संपूर्ण बनकर कितनी आत्माओं को संपूर्ण बनने के लिए मार्गदर्शन करके, अभी हमारी दादियां तो अव्यक्त हो गई सारी, लेकिन उनका एक एक का जीवन, एक एक का जो कार्य है, एक एक का चरित्र है, हमारे लिए एक आदर्श है और हम केवल उसको भी फॉलो करेंगे, उसको भी देखेंगे तो बाबा के साथ समान बनने का अनुभव कर सकते हैं ना। अभी तीन दिन में तो आप अनुभव करेंगे कि इस धरनी पे अपने आप ही गिफ्ट मिलती है, लेकिन अभी ये जो संपूर्ण अवस्था में जाने का रास्ता जो तय होता है ना, वो जैसे कहा कि सबसे पहली चीज तो आजकल देखते हैं ना कि चारों तरफ युद्ध की बातें होती है, अचानक से कुछ ना कुछ डिक्लेयर हो जाता है कभी पेट्रोल डीजल की बात हो गई, कभी कुछ बात हो गई, कभी घूमने फिरने का रिस्ट्रिक्शन आ गया। तो बाबा ये भी हमारे लिए रिहर्सल कराते हैं ना, बाबा कहते हैं कि रिहर्सल हो रही है, अचानक से पर्दा गिरेगा, तो जब अचानक से गिरेगा तो उसके पहले तो हमें रेडी होना पड़ेगा। जब रेडी होना है तो सबसे पहला चेंज या पहली तैयारी कौन सी होनी चाहिए परिवर्तन के लिए? सबसे पहली तैयारी, आपने सबने कहा ना कि हम बाबा के संपूर्ण ब्राह्मण बच्चे हैं ना, तो हम अपने आप को अगर संपूर्ण बना लेते हैं तो हमारा फर्ज है कि बाबा को ऑफर कर देवे कि बाबा आपका जो भी कार्य है ना उसके लिए हमारा यूज कर लो, सेवा में हमारा यूज कर लो। कौन कौन चाहते कि भगवान हमारा यूज कर लेवे? सभी चाहते हैं। तो भगवान किसको यूज करते करेगा? सबको तो नहीं करता है ना, उनके सामने तो करोड़ों आत्मा है, लेकिन किसको यूज करेगा? सबसे पहली निशानी बहने का सच्चाई सफाई वाले, सच्चाई सफाई वाली आत्मा है। बाबा को, भगवान को सबसे ज्यादा पसंद है सच्चाई सफाई। सफाई कौन सी? मन की, तन की नहीं, तन की नहीं। देखो एक मूर्ति भी होती है ना अपने घर में, छोटे सा एक कोने में हम एक भगवान का घर बनाते, एक मंदिर रहता है ना पूजा, जब भक्ति मार्ग में भी, तो उस जो परिसर है ना कितना साफ रखते है, पूरा घर एक तरफ और वो मंदिर एक तरफ, इतना सफाई रखते, उतना ध्यान रखते हैं। तो हम वही मूर्ति लायक बन रहे हैं ना, तो बाबा को तो वही बच्चे पसंद आएंगे ना कि हम जहां जहां भी रहे हमारे से वो सफाई सच्चाई सबको प्रत्यक्ष रूप में दिखे। नहीं तो हम अपने बाबा के रॉयल, बाबा के रॉयल बच्चे हैं और थोड़े सा ऐसे ही रहना शुरू कर देवे तो कोई कहेगा कि परिवर्तन करने के लिए आए। तो सबसे पहली तो फिजिकल सफाई भी है, मन की सफाई तो है, लेकिन उसके पहले भी हमारा फिजिकल अपीयरेंस कैसा होता है, हम रहते कैसे है, बोलते कैसे है, व्यवहार कैसा है, पर्सनैलिटी कैसे है, उसी से समझ में आता है कि कितना सच्चा व्यक्ति है। अंदर कुछ हिडन नहीं होता है, अंदर कुछ बाहर कुछ ऐसे होता है ना तो उसके चेहरे पे दिखेगा, उसका चेहरा ही अच्छा नहीं लगेगा, थका हुआ सा लगेगा, मुंझा हुआ सा लगेगा या तो डरावना लगेगा, है ना, उसके साथ में कोई रहना नहीं चाहता है। तो वो सफाई भी, उसके साथ में सच्चाई, सफाई के साथ में सच्चाई, उसमें भी सबसे पहली सच्चाई, सच्चाई सफाई अगर है कौन सी है? मन में भी सबसे पहली संकल्पों से भी पहली, संकल्पों से भी पहली, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते है। वो भी पीछे आती है। पहली शुद्धता है, पहली सफाई है, पहली सच्चाई है अपनी स्मृतियों की, क्योंकि हमारी आत्माओं के पास है ना बहुत सारी स्मृतियां है, बहुत सारी मेमोरीज है, बहुत सारी यादें है, और एक आत्मा का, एक व्यक्ति का एक नेचुरल संस्कार होता है ना, आप भी अनुभव करते होंगे, आपके संपर्क में बहुत सारी आत्माएं आती है, लेकिन उन आत्माओं से जिन्होंने थोड़ा सा कड़वाट दिए ना, जिन्होंने थोड़ा सा कभी दुख दिया है, जिन्होंने कभी कुछ गलत शब्द अपशब्द कहे हैं, जिन्होंने हर्ट किया हुआ है, तो हम लोग वही स्मृतियों को बार बार रिपीट करते हैं, अच्छे स्मृतियों को रिपीट नहीं करेंगे। तो सबसे पहली सफाई तो है ना कि हमारी स्मृति को, हमारे मेमोरी को क्लीन करने की जरूरत है। देखो बाबा ने कितनी हमारे आदि अनादि स्मृति हमें इमर्ज करके दी। आदि स्वरूप में कौन थे? आदि स्वरूप में कौन थे? देवी देवता थे ना। तो देवी देवता केवल मैं अकेला था क्या? है ना, यहां जो बैठे ना सारे देवताएं थे ना, सारे देवताएं थे। तो देवताएं मतलब हर कोई दिव्य कर्म वाले, उनके नयन भी दिव्य होंगे, कर्म भी दिव्य होंगे, संस्कार भी दिव्य होंगे। तो वो स्मृति को अगर विमर्श करेंगे ना, तो अभी की कलयुग की स्मृतियां हमको पता ही नहीं चलेगी, विस्मृत हो जाएगी। फिर ये नहीं लगेगा कि ये व्यक्ति थोड़ा सा क्रोध करने वाला है, ये थोड़ा सा ईर्ष्या करने वाला है, ये थोड़ा सा मुझे पीछे खींचने वाला है ना। ये तो एक अल्पकाल की होती है ना। तो वो अगर हम अनादि आदि अनादि स्मृति कर इमर्ज करेंगे तो अपने आप ही हमारी स्मृति शुद्ध हो जाएगी। और आदि स्वरूप तो ही बिंदु स्वरूप है ना, वहां तो कोई बात ही नहीं डिफरेंस का, चाहे मेल है फीमेल है, कोई भी धर्म का है, कोई भी पंथ का है, कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन आत्मा तो सारे एक जैसे है, एक परमात्मा बाकी सारे आत्मा है। तो इस तरह से अगर आदि अनादि स्मृति रहेगी तो हमारी स्मृतियां शुद्ध हो जाएगी। उसके बाद आती है फिर वृत्ति। वृत्ति कितनी शुद्ध है हमारी, एक छोटी सी हिस्ट्री की बात आपने सुनी होगी या तो नहीं सुनी होगी। हमारी दादियों ने बताया कि एकदम पहले पहले एकदम शुरुआत में ये जो बाबा की झोपड़ी है ना, इसके सामने जो अंगूर के बेल लगे हैं, उनको अंगूर लगे थे। तो एक बहन आके बड़े क्यूरियासिटी से देख रही थी अंगूर लटके हुए, बहुत खुश हो रही थी देखते हुए। तो उनके बाजू में पीछे से अपने दीदी मनमोहिनी आए, दीदी मनमोहिनी ने उनके कंधे पे हाथ रखा और उस बच्ची को पूछा कि क्या देख रही हो। तो उसने बड़े खुशी खुशी कहा कि दादी मैं अंगूर देख रही हूँ, बाबा के अंगूर आए हैं। तो दीदी बोलती है कि नहीं अच्छा है, बाबा के बगीचे के अंगूर है, लेकिन इन अंगूरों में तुम्हारी वृत्ति तो नहीं गई कि एक अंगूर मैं खाऊं, एक अंगूर टेस्ट करूं। तो देखो हमारे जो बड़े है ना, तो कितना एक छोटी सी बात को भी कितना महीनता से सोचते थे। तो हमारी वृत्ति भी अगर इतनी शुद्ध होगी ना कि एक संकल्प मात्र भी अगर आसक्ति नहीं जाए, संकल्प मात्र भी अगर नेगेटिविटी ना हो, तो हमारी वृत्ति उसको कहेंगे हम सच्चाई सफाई वाली शुद्ध वृत्ति है। तो अपने आप को जांचिए कि मेरी वृत्ति चलते फिरते सेवा करते संबंध संपर्क में आते कितनी शुद्ध है, क्या उसमें थोड़ी सी अशुद्धता थोड़ा सा एक स्वार्थ भाव अगर आता है तो उसी समय अगर करेक्ट करेंगे तो वो करेक्ट हो जाएगा। अगर हम उसको कैदी करेंगे ना तो हमारी वृत्ति का वैसे ही संस्कार बन जाएगा, जैसी वृत्ति होगी वैसी दृष्टि बनेगी। तो दृष्टि में सच्चाई कैसी होगी? दृष्टि में सच्चाई मतलब क्या? एक परम सत्य बाप है, परम सत्य बाप के हम सभी सत्य बच्चे हैं, इतना सत्य कि उसके आगे फिर जो दूसरी बातें आती है ना आजकल कि यहां ये हो गया वहां वो हो गया, यहां कोई बाबा आ गया वहां किसी के कोई ज्ञान सुनाने लग गया, तो हमारी दृष्टि वहां नहीं जाएगी। कई बार देखते हैं ना आजकल YouTube पे हम क्लासेस वगैरह बहुत सारा सुनते हैं, लेकिन क्लासेस सुनते सुनते कुछ नेगेटिव चीजें भी आ जाती है, नेगेटिव चीजें आ जाती है तो हमारा थोड़ा सा दृष्टि वहां जाती है कि क्या क्या बोल रहा है, कम से कम सुने तो सही क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है थोड़ा देखे तो सही। लेकिन हमारी दृष्टि अगर सत्य है तो सत्य के अलावा कहीं दृष्टि जाएगी नहीं, अगर जाती है उसको समय पर हम वापिस उसी पोजीशन पे लेके आवे सत्य बाप के पास। तो जब दृष्टि और वृत्ति हमारी इतनी शुद्ध होगी सच्चाई वाली होगी तो फिर हम भगवान के लायक बनेंगे ना। भगवान के लायक मतलब हम ऑफर करते हैं तो भगवान हमारा यूज कर लेगा, सेवा में लगाएगा जब सच्चाई सफाई होगी। दूसरी कौन से सच्चाई सफाई वाली आत्मा को बाबा स्वीकार करेगा या सेवा में लगाएगा, यूज करेगा। दूसरा कैसी कौन सी आत्मा है जो हमेशा एवर रेडी रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति आए एवर रेडी। एवर रेडी किसको कहेंगे, किसको कहेंगे एवर रेडी? हमेशा तैयार, लेकिन किस चीज के लिए? सेवा के लिए, हर चीज के लिए। भगवान की आज्ञा हो गई, बस आज्ञा को पूरा करने के लिए रेडी। जब एवर रेडी रहना है ना, तो दो प्रकार की हमको तैयारी करनी पड़ेगी। पहली तैयारी तो आध्यात्मिक तैयारी है, और दूसरी तैयारी अपनी फिजिकल तैयारी। आध्यात्मिक तैयारी में क्या करेंगे? आत्मा को रेडी करने के लिए, हमारे संस्कारों को रेडी करने के लिए क्या करना पड़े? जब तो कहीं जाना होता है तो हम क्या करते हैं, सारा समेटते हैं ना सारी चीजें। तो जब हम यहां से बुद्धि निकलनी है, यहां कहीं अटके नहीं, इसलिए सबसे पहली तैयारी है समेटना। जहां जहां अटैचमेंट है, जहां जहां मेरा मन अटका हुआ है, जहां जहां थोड़ा सा दिल लगा हुआ है, वहां से उस अटैचमेंट से मुक्त होना ना। सभी योग करते हैं ना, कई बार हमारी खास करके माताएं है ना, किसी का स्वास्थ्य हो जाए, अच्छा हो जाए, उसके लिए योग करेगी। घर की परिस्थिति अच्छी हो जाए उसके लिए योग करेंगे, है ना, सेंटर का वातावरण अच्छा हो जाए उसके लिए योग करेंगे, कुछ विघ्न आ गया तो उसके लिए योग करेंगे, करते हैं ना सभी। लेकिन क्या कभी अपनी खुद की स्थिति अच्छी हो जाए इसके लिए योग किया है? जो आत्माएं खुद की स्थिति के लिए योग करना शुरू करता है ना, उसके पास कोई दूसरे प्रकार के विघ्न आ ही नहीं सकते। इसलिए योग के प्रयोग भी है ना, अपने खुद के स्थिति के लिए करना शुरू कर देंगे तो हमारी आत्मिक जो स्टेज बनना या तैयारी होना शुरू हो जाएगी। हमारी जो दादियां थी ना, दादियों को हिस्ट्री में आपने सुना होगा, 14 साल तक वहां कराची में बाबा ने पूरा भट्टी में रखा था, सारी दुनिया से एकदम कट, केवल बाबा और बच्चे। और जो वो आत्माएं परिपक्व उस समय हो गई, सारी सब जगह से उनका अट्रैक्शन हट गया, केवल बाबा के प्रति मन लगा। उसके बाद बाबा माउंट आबू लेके आए और यहां से फिर सेवाओं में भेजा। इसलिए जहां भी सेवाओं में गए ना, तो उनका कहीं भी बाबा के सेवा कोई संकल्प ही नहीं चला। दादी जानकी एक दिन बता रहे थे कि यहां से जब पहली बार गए थे दादी जी और मनोहर दादी जी दिल्ली में गए थे, तो वहां रोटी के ऊपर थोड़ा नमक डाल के ऐसे खाते थे, केवल रोटी और नमक खाके उन्होंने सेवाएं शुरू की। कहां कैसे कैसी जगह पर संघर्ष करके, केवल बाबा पर, एक बाबा दूसरा कोई नहीं, एक बल एक भरोसा, उस भरोसे पर सेवाएं शुरू की। और उस सेवाओं का रिजल्ट आज हम देख रहे हैं कि आज इन आत्माओं के लिए किसी को कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सब दिल से मान लेते कि ये श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये संपूर्ण आत्माएं हैं, ये बाबा की आज्ञाकारी वफादार आत्माएं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कर्मों से वो बताया। दादी ने बताया था कि जो भोग लगाते ना, शुरुआत में भोग नहीं लगाते थे ऐसे बाबा को, लेकिन जब सेवाओं में निकले फिर कोई कोई आत्माएं सहयोग करने लगी, बहनों को देख के कि अरे इनके पास तो कुछ है नहीं, तो इनको थोड़ा सहयोग करने लगी। कोई अनाज लाके देता था, कोई दूध लाके देता था, कोई पैसा लाके देता था। तो उस समय बाबा ने ये कहा कि जो भी लाके देता है तो सबसे पहले बाबा को भोग लगाओ, बाबा के सामने रखो, उसके बाद में कुछ स्वीकार करो, क्योंकि दादियां तो स्वीकार ही नहीं करती थी। तो बाबा ने ये युक्ति भी बताई कि जो कुछ है पहले बाबा को अर्पण कर दो, बाबा से कुछ स्वीकार करो, तब यज्ञ इतना अभी इतना वट वृक्ष बन गया है। तो वो जो तैयारी की ना, मन की तैयारी, हमें भी अभी जो समय चल रहा है बहुत फास्ट है। जब कोरोना पीरियड आया था, कोविड पीरियड, सबने देखा, उसके बाद में बहुत सारे क्लासेस भी हुए और एक लहर सी हो गई थी कि बाबा ने एक अलार्म बजा दिया, एक अलर्ट दे दिया। लेकिन फिर 4-5 साल बीत गए ना, फिर हम वापिस ढीले हो गए। लेकिन अभी ऐसी सिचुएशन है, अभी भी परिस्थिति है पूरे विश्व की, बहुत तेजी से चेंज होती है, बहुत सारे रोज नए नए घटनाक्रम हो रहे हैं। तो कभी भी कुछ भी कहीं भी ड्रामा का सीन सामने आ सकता है, और उस समय अगर हम रेडी नहीं है तो हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसलिए थोड़ा सा जांच कीजिए कि मेरी बुद्धि, चाहे किसी व्यक्ति में, चाहे किसी साधन में, चाहे कहीं मकान में, चाहे सेवा में, सेवा साथियों में, कहीं ना कहीं अगर थोड़ी भी अटैचमेंट है तो वही लास्ट समय में वही सामने आएगी। क्योंकि लास्ट अंतिम समय तो अंतिम पेपर आना है, वो एक सेकंड का आएगा, लेकिन उस सेकंड में कौन सामने आता है, कौन सी घटना सामने आती है, उसके आधार से हमारी गति है। जिसके साथ में बाबा आए उसकी सदगति हो जाएगी, नहीं तो कहीं ना कहीं हमारी जो ग्रेड है ना आत्मा की, वो थोड़ी सी डाउन हो जाएगी। तो ये जो स्पिरिचुअल तैयारी है, आध्यात्मिक तैयारी, इसके लिए हमें अपने आप को टाइम देकर कि इसके लिए विशेष मेरी स्थिति के लिए मुझे योग करना है, विशेष मुझे जांचने के लिए कि मेरी बुद्धि कहाँ कहाँ फंसी है, कहाँ कहाँ मेरी बुद्धि जाती है, उसमें से बुद्धि निकाल बाबा को, जो चीज में बुद्धि गई वो बाबा को अर्पण कर दो, स्वतः ही बाबा की तरफ बुद्धि लग जाएगी। दूसरा जो फिजिकल तैयारी, फिजिकल तैयारी में क्या करेंगे, जैसे बाहर कहीं जाना होता है, आप आए तो आपको, आपने सबसे पहले क्या किया होगा, बैग तैयार किया होगा, अपने पुराने कपड़े धुलाई करके मधुबन जाना है, अच्छे से प्रेस करके अपने बैग में रखे होंगे, यहाँ आए होंगे तो व्यवस्थित तैयारी किया ना। ऐसे बाबा, हमारी बहनों को आदत है कि शुरुआत में बाबा बहनों को या बड़ी बहनें अचानक से बोलते थे, प्रोग्राम में जाएगी दीदी या बड़ी और शाम को बोलेगी अच्छा मेरे साथ चलो अभी दूसरे सेंटर पे जाना है ना, बहनें निकल जाती थी। तो इतना एवर रेडी का तैयारी बाबा करवा के रखता था बहनों की, दादियों को भी बाबा ऐसे ही करते थे, अचानक से बोलेंगे अच्छा एक घंटे में तैयार हो जाओ, आपको दूसरी जगह जाना है, यहाँ जाना है। तो वो फिजिकल तैयारी भी इसलिए जरूरी है क्योंकि सेवा का कौन सा सीन सामने आएगा ना, वो हमें नहीं पता, बाबा को पता है, ड्रामा को पता है किस आत्मा की कहाँ कैसे आवश्यकता है। और इसलिए एवरेडी उसको कहेंगे कि जो भी ऑर्डर मिले एक सेकंड में हम तैयार हो जाए। हम लोग जब यूथ विंग के सारे भाई बहने दादी को मिल रहे थे, दादी जानकी जी को, तो दादी जी ने एक चीज कही कि बाहर बहुत सारी आर्मी होती है, बहुत सारे ऐसे ट्रूप्स होते हैं जो डिजास्टर में मदद करते हैं या अपना वहां योगदान देते हैं, लेकिन बोला कि आप लोग तो अपने आप को ऐसे समझो जैसे फायर ब्रिगेड होता है। फायर ब्रिगेड वालों को समय नहीं मिलता, वो तो स्टीयरिंग पे बैठा रहता है, जैसे कहीं मिल दे तुरंत उसको भागना है। तो वैसा कभी बाबा की तरफ से इशारा आ जाए, सेवा का चांस आ जाए, उसके लिए जो रेडी रहेगा ना उसी आत्मा को बाबा यूज करेगा। बाकी हम कितना भी तैयारी करके रखो और समय पे फिर बोलो नहीं मुझे थोड़ा सा अभी टाइम चाहिए, थोड़ा सा ये चाहिए, तो बाबा दूसरों को चांस दे देगा। तो पहला हो गया सच्चाई सफाई, दूसरा हो गया एवर रेडी, तीसरा कौन सी आत्माओं को बाबा यूज करेगा, उतनी आत्माओं को बाबा सेवा में यूज करेगा जिनका निमित्त और निर्माण का भाव पक्का है। जहां मैंपन आ गया कि मैंने किया, तो बाबा उसी समय वहां ब्रेक लगा देते हैं, कितना भी क्वालिटी हो लेकिन वो सेवाएं करेंगे, लेकिन जहां उनका मैंपन आ गया कि मैं कर रहा हूं, तो वहां उसकी चढ़ती कला को ब्रेक लग जाता है। इसलिए अगर हम बाबा के ऊपर सौंप देते हैं ना, तो बाबा ऐसी आत्मा को यूज करता है जो निमित्त बन के करेगा, कराने वाला बाबा है। एक बार अव्यक्त बाबा आए थे डायमंड हॉल में, तो एक भाई आए, बड़ी सेवा करके धूमधाम से बहुत सेवाएं की और बाबा के सामने सारा सुना रहे थे, बाबा मैंने ये भी किया, बाबा मैंने ये भी किया, बाबा ये किया। बाबा ने बड़ा प्यार से सुना, लास्ट में एक शब्द बाबा ने कहा, अच्छा बच्चे, बहुत अच्छा आपने किया, तो बाबा ने क्या किया? सेवा तो बाबा की है ना, तो वो पार्ट देखो कि कराने वाला कौन है? बाबा है। हम तो केवल निमित्त मात्र है। अगर भगवान की मर्जी नहीं है ना, तो हम चाहे कुछ भी कर ले, हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर उसकी मर्जी है तो हम तैयार भी नहीं है तो भी बड़ी बड़ी सेवा हो जाएगी। तो निमित्त और निर्माण भाव जिस आत्मा के पास है, उसी आत्मा को भगवान यूज करेगा। उसके बाद वो कौन सी आत्मा, उसी को ऐसे अपनी विशेषता देखो कि मुझे कहाँ यूज करेगा। अगर मैं बाबा की सेवा के लिए रेडी हूं, सच्चे सफाई वाले हो गए, एवर रेडी हो गए, निमित्त वाले हो गए, एक चीज बची है। जो सदा सदा अपनों से आगे यज्ञ को रखता है, यज्ञ के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है ना जो आत्मा, मेरा कुछ है ही नहीं, मेरे से पहले बाबा का यज्ञ है, जो अपने से आगे यज्ञ को रखता है ना, उस आत्मा को भगवान यूज कर लेता है। तो आप सोचिए कि स्वयं भगवान, सर्वशक्तिमान बाबा, सर्वशक्तिमान भगवान, वो जो आत्मा को अपनी सेवा में यूज करे, वो आत्मा कितनी भाग्यवान कि भगवान उसको यूज कर रहा है। तो अपने आप को तैयार करना है कि मुझे भगवान यूज करे ना, तो ये पांच चीज अपने अंदर लाओ। थोड़ा सा अभी भी समय है, थोड़ा सा अपने आप को इसके लिए रेडी कीजिए। भगवान बस यूज कर ही रहा है, लेकिन बहुत अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। अच्छा, हम भगवान को यूज कर सकते हैं, बाबा को यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं? देखो, कोई मिनिस्टर होता है ना बड़ा, कोई मिनिस्टर होता है, मिनिस्टर के वहां ऑफिस में काम करने वाला तो छोड़िए, वो जो मेन गेट पे होता है ना, गेट कीपर जो गार्ड होता है, वो गार्ड भी अपने मोहल्ले में जाके बोलता है कि भाई मैं साहब के वहां ड्यूटी पे होता हूं, अगर साहब से कुछ काम हो तो बताओ, मैं मिलवा दूंगा, है ना। और हम तो किसके साथ सेवा कर रहे हैं? स्वयं बाबा के साथ। तो क्या हमारे पास इतनी अथॉरिटी है कि कोई अगर आत्मा आता है कि चल मैं तुमको भगवान से मिलाता हूं? क्योंकि तो बाबा ने तो कहा ना कि बस दिल से कहो मेरा बाबा, मैं तो हाजिर हो जाऊंगा। तो बाबा तो सेवा में आने के लिए, यूज होने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन कौन से बच्चे बाबा को पुकार सकते हैं, कौन से बच्चे भगवान को यूज कर सकते हैं? जिन बच्चों का बाबा के ऊपर अटूट विश्वास है, अटूट, वही भगवान को यूज कर सकते हैं। हम जब बैठते हैं, सोचते हैं, तो बहुत सारी चीजें हम अभी बोलेंगे ना, बहुत सारे लिखेंगे कि हाँ कहाँ कहाँ बाबा का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब परिस्थिति आती है ना, तो जब बाबा को याद आना चाहिए, उस समय बाबा याद नहीं आता है। उस समय फिर बाजू वाला याद आ जाता है, कोई याद आता है, कोई कहाँ कहाँ बुद्धि जाती है, अरे ऐसे होता तो वैसे होता, वैसे होता तो ऐसे होता। तो बाबा कहते हैं कि बाबा के ऊपर अटूट विश्वास, चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर बाबा मेरे साथ है तो मुझे दुनिया में कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। अगर भगवान के साथ मैं हूं तो मुझे दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। जब भगवान मेरे साथ है, स्वयं बाबा मेरे साथ है, तो सारी दुनिया मेरे साथ है। क्या चाहिए? जिसके हाथ में, जिसके मुट्ठी में बाबा भगवान है, उसको क्या और चाहिए, है ना। और बाबा ने इतनी अथॉरिटी तो हमको दे ही दिया है संगम युग में। वो अथॉरिटी कहाँ मिली? केवल ये दिन है संगम युग के। देखिए, इतना बड़ा कल्प, 5000 साल का कल्प, कितने जन्म हमारे हुए, उन जन्मों में शुरुआत में तो राजा ही ली, उसके बाद में भक्ति की होगी, भगवान को पुकारा होगा, उसका भक्ति का थोड़ा बहुत फल भी मिला होगा, लेकिन उसमें अंतिम जन्म हमारा संगम युग का है। और भी कितना, किसी की 50 साल आयु होगी, किसी की 70 होगी, किसी की 100 होगी, 100 साल में भी बाबा के साथ कितना समय रहते हम, थोड़ा ही समय रहते हैं ना अपने जीवन में से, कि 30% 40% इतना ही हम बाबा के साथ रहते, उसमें से भी बाबा के साथ योग कितना समय रहता है, बहुत कम समय। तो सोचिए 5000 साल में थोड़े से पल हम भगवान के साथ बिताते हैं, थोड़े से पल, साल भी नहीं, वो थोड़े से पल में भगवान सारी अथॉरिटी हमको दे देता है कि जब चाहे तुम मुझे बुला लो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो कितना बड़ा एक चाबी है, कितनी बड़ी गिफ्ट है अपने पास, और उस गिफ्ट को बस सही तरीके से यूज करना आना चाहिए। हम अपने आप को ऑफर कर देवे कि भगवान बाबा मुझे जैसे चाहे जहां चाहे यूज कर लेवे, लेकिन मुझे भी भगवान बाबा मेरे साथ है तो मैं बाबा को भी जहां चाहे यूज कर सकता हूं। फिर जब बाबा को यूज करने की बात आती है ना, बाबा को साथ रखने की बात आती है, उस समय सबसे पहली कंडीशन क्या है, बाबा किसके साथ बना रहता है, पहली कंडीशन, हाँ कंबाइंड फॉर्म में है, तो कब कंबाइंड फॉर्म में कब रहेगा, पहली कंडीशन है कंबाइंड फॉर्म की, हाँ समान रहे, समान बनेंगे तो समान में भी क्या आएगा, जैसे शिव बाबा बिंदु स्वरूप है, वैसे जब हम अपने आप को आत्मा समझेंगे, शरीर को भूल जाएंगे, आत्मा समझेंगे, तभी हम कंबाइंड हो पाएंगे। अगर हम अभी तक भी शरीर को देख रहे हैं, शरीर समझ रहे हैं, तो हम परमात्मा के साथ कंबाइन नहीं हो सकते। आत्मा परमात्मा का मिलन कहा हुआ है, कोई आत्मा और शरीर धरे ब्राह्मण का मिलन नहीं कहा हुआ है। इवन देखिए शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर ज्ञान सुनाया, इतना सारा ब्राह्मण परिवार स्थापन किया, लेकिन फिर भी ब्रह्मा और शिव बाबा एक नहीं हुए, तो ब्रह्मा बाबा को भी पुरुषार्थ करना पड़ा, तब आत्मा परमात्मा अभी साथ है, तो बाप दादा से हम अभी मिलन बनाते हैं, है ना। तो आत्मा और परमात्मा जब तक हम इस शरीर के भान से परे नहीं होंगे, हमारा पहली बेसिक कंडीशन ही वो है, और शरीर के भान से परे तब हो सकते हैं जब हमें नित रेगुलर इसका अभ्यास हो, कि रेगुलरली हम अपने आप को आत्मा समझ, अपने शरीर को ट्रस्टी बनकर देखने का अभ्यास होगा, तभी हम एक सेकंड में डिटैच हो जाएंगे, एक सेकंड में बाबा के पास पहुंच जाएंगे। तो शरीर से भान से अलग मतलब केवल ऐसे नहीं कि यहां से निकल गए बस अपने आप को देख लिया, शरीर के भान से अलग मतलब शरीर और शरीर के संबंध में आने वाले हर व्यक्ति, हर वस्तु, हर पदार्थ, इनसे अनासक्त। जब इनसे अनासक्त होंगे तभी इस भान से बाहर निकलेंगे ना। तो 2 मिनट के लिए तो विजुलाइज कर लिया कि मैं बाहर हूं, लेकिन भान से तो बाहर नहीं निकले। तो दादियों को देखा मधुबन में, जब शुरुआत में बाबा यहां लेके आए थे, तो कराची में तो जो अभ्यास कराया, लेकिन यहां खास करके पहाड़ियों पे जाकर और सब जगह जाकर यही अभ्यास बाबा कराते थे कि एक सेकंड में शरीर से दूर न्यारे हो जाओ, ऐसे समझो कि अपना शरीर है ही नहीं, और वही अभ्यास फिर अंतिम समय तक जब तक सेवाएं चली से चल रही है तब तक के महारथियों को वही अभ्यास काम आता है। इसलिए हमने कई बार देखा ना, बड़ी सी बड़ी बात भी अगर सामने आती है, कुछ भी होता है, तो कभी दादियों ने ये नहीं कहा कि अच्छा मैं सोचती हूं, ठीक है ना, इसमें से करते हैं हम, देखते हैं। हम तो हमेशा ये कहा कि बाबा बैठा है ना, वो देख लेगा। तो जैसे इतनी बड़ी अथॉरिटी होने के बाद भी एकदम बाबा के ऊपर पूरा विश्वास पूरा छोड़ के आनंद लेते थे संगम युग का। तो हम सभी भी इस संगम युग में जो समय मिला है अपने आप को परखने का, अपने आप को जांचने का। जब बीमार होता है ना व्यक्ति तो क्या करते हैं आजकल, डॉक्टर के पास जाएंगे, बड़े डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर सबसे पहले करे जाएगा, बोलेगा जाओ पहले सोनोग्राफी कराओ, सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, एक्सरे कराओ, उसके बाद मेरे पास आना, तब तक दवाई नहीं लिखेगी। तो वो जब तक जांच नहीं होगी ना तब तक डायग्नोसिस भी नहीं होगा, जब डायग्नोसिस नहीं होगा तो ट्रीटमेंट भी नहीं होती है। तो आप सभी को ये जो चांस मिला है ना भट्टी का, तो अपने आप के लिए वैसा ही चांस समझिए कि अपने आप को जांचने का, स्कैनिंग करने के लिए समय मिला है। और ये समय दोबारा संगम युग में कब मिलेगा नहीं पता, इसलिए जो भी जितना भी समय हमको मिला है ना, अपने आप को उसके लिए थोड़ा सा भरपूर करें। तो मधुबन में आने के लिए एक होमवर्क देंगे आपको, पहला ही दिन है ना आपका, तो सभी भाई बहनों के लिए खास करके, आप जब तक यहां रहो मधुबन में पांडव भवन में, तो पांडव भवन का एक एक वास्तु है ना, बाबा का कमरा है, बाबा की झोपड़ी है, शांति स्तंभ है, हिस्ट्री हॉल है, जहां मम्मा रहती थी, बाबा यहां रहते थे, उसके बाजू का जो कॉम्प्लेक्स है, भंडारा है, सब जगह दादियों ने बनाई हुई एक एक वास्तु है, ये मेडिटेशन हॉल है, यहां देखो बाबा रात रात भर मिले अव्यक्त बाप दादा। तो इन वाइब्रेशंस को आप फील कीजिए, और जहां भी जाएंगे ना, सब जगह चक्कर तो लगाएंगे आप, तो जहां भी जाएंगे तो बाबा से बात करके बाबा से क्या प्रेरणा मिलती है ना, अपने डायरी में आप नोट कर लीजिए। हिस्ट्री हॉल है, हिस्ट्री हॉल के चारों तरफ के जो कमरे हैं, सारी दादिया अष्ट दादिया वहां रहती थी, तो दादियों ने वहां रह के एक साथ रह के इतना एक गुलदस्ता बनकर सेवाएं की। दादियों की एक विशेषता हम सबने देखी कि सभी दादियों की विशेषता अपनी अपनी है, लेकिन सबकी राय एक हो जाती थी, कभी हमने ये नहीं देखा कि दादियों में कुछ डिफरेंस है, जबकि सबका अपना अपना एक थिंकिंग प्रोसेस था, अपने अपना एक कार्य करने की शैली थी, अपने आप चिंतन करने की शैली थी, लेकिन अलग अलग होते हुए भी हमेशा एक बन के रहे। तो ऐसे ही अपना यह संगठन है ब्राह्मण संगठन, तो आप आए हैं तो यहां से बंच बन के ही एक विचार से एक संकल्प से यहां से बाहर निकलेंगे, तो बाहर सेवाएं तो आपके लिए इंतजार कर रही है सभी के लिए। ऐसे भी सेवाएं बहुत हो रही है, लेकिन जो अभी एक मूल सेवा जो बाबा कहते हैं ना वो बाकी है, कौन सी? बाबा कहते हैं कि सबको परिचय तो मिल गया, ब्रह्म को माइज अच्छी है, लेकिन एक सेवा बाकी है जो हरेक के चेहरे और चलन से बाबा का साक्षात्कार हो जाए, बाबा दिखाई दे। तो बाबा दिखाई दे मतलब ऐसे नहीं होगा कि आप जाओगे तो ब्रह्मा बाबा दिखाई देगा, लेकिन आपके चलन से, आपके चरित्र से, आपके बोल से सबको महसूस हो कि यही है जो भगवान ने भेजे हुए दूत है, यही है जो हमें कुछ राहत दे सकते, यही है जो हमें शक्ति दे सकते। और उसके लिए बेस्ट समय आप सभी को मिला है, तो पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत भी है। ये होमवर्क तो आप करेंगे, लेकिन उसके साथ में जो कंबाइंड स्वरूप की जो बात किया ना, तो यहाँ मधुबन में रह के आप उसका भी बहुत अच्छा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि जहां भी जाएंगे ना आपको सबको महसूसता होगी कि बाबा यही कही है, बाबा यही कही, मतलब उसको भक्ति मार्ग में लोगों ने गलत ले लिया कि सर्वव्यापी है, लेकिन वाइब्रेशंस जो है साकार बाबा के या उनके कर्म है, उनकी जो छाप है, उनकी जो निशानियां है, आपको मधुबन में मिलेगी, और आप उसको एंजॉय भी करेंगे, अपनी भट्टी भी बहुत अच्छी तरह से करेंगे, और साथ साथ जो शुरुआत हमने जो की थी, अपने आप को भगवान के लिए अवेलेबल करा देवे कि मुझे जैसे बाबा को यूज करना है, मैं आत्मा अभी रेडी हूं। तभी हम संपूर्ण अवस्था में प्राप्त कर सकते हैं। अपनी हरेक आत्मा की संपूर्ण की स्टेज अपनी अपनी है, लेकिन वो स्टेज भी तभी आ सकती है जब हम अपने आप को ऑफर कर देवे, तैयार कर देवे कि बाबा बस अभी जैसे यूज करना है तुमको, जहां ले जाना है, जहां बिठाना है, जैसे चलाना है, जैसे खिलाना है, मैं रेडी हूं। अपने आप को रेडी कर देवे तो बाबा आपके लिए तो सब कुछ खोलने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, तो आप सभी को मिलके मेरी खुशी हुई, क्योंकि जैसे कहा कि ये जो अलौकिक परिवार है, अलौकिक परिवार से जब भी मिलना होता है, संगम युग में शायद पहली बार मिलते फिजिकली, लेकिन ऐसे लगता है कि जन्म जन्म से मिलते आ रहे हैं और मिलते भी रहते हैं किसी न किसी रूप से। तो बाबा का ये बंच, बाबा का एक परिवार, कहीं भी जाओ, दादी हमारी बड़ी दादी कहती थी हमेशा कि मेरा परिवार इतना बड़ा है जो एक घर से दूसरे घर में जाने के लिए मुझे फ्लाइट यूज करनी पड़ती है ना। दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, अपने अपने परिवार के मिल ही जाते हैं, और उस परिवार की जो फीलिंग है, केवल और केवल संगम युग में हम आत्माएं अनुभव कर पाती है, क्योंकि आदि मध्य अंत का नॉलेज है ना, केवल अभी ही हमें मिलता है। सतयुग में मिलेंगे लेकिन हमें पता नहीं चलेगा, वो स्मृति तो नहीं रहेगी ना, लेकिन बाबा ने अभी सारी स्मृतियां दे दी कि आदि में कौन थे, अनादि में स्वरूप में क्या थे, जब हम पूज्य स्वरूप में थे तो उस समय भी कैसे साथ में थे, ब्राह्मण स्वरूप में भी कैसे साथ में है, परिस्ता स्वरूप में भी सबको साथ में उड़ के जाना है, तो हमेशा हर कलप साथ साथ ही रहना है, और बाबा तो ही। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओम शांति। अभी जो गीत बजेगा ना ट्रैफिक कंट्रोल का भी, उसमें उसी स्मृति में अपने आप को देख के अपने आप को बाबा के सामने पूरा अर्पण कर दीजिए, वो भी संपूर्ण स्वरूप में, ऐसे आधे अधूरे स्वरूप में नहीं, संपूर्ण स्वरूप में। ऑप्शन
प्रभु का ध्यान।